है, और ये रेस जो है ये सिर्फ चेंज के बारे में नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटिव जो है वो ऑप्शन जो है जो उनको देने की जरूरत है। एचेसन जो थे उन्होंने कहा जी कि ट्रूडो साहब की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही डिविसिव किस्म की है, लेकिन हमको अपने अंदर डिविजन्स नहीं बनानी चाहिए। अगर जो कनेडियंस के प्रॉब्लम्स हैं और जो उनके चैलेंजेस हैं उनको अगर हमने खत्म करना है, जो डे टू डे बेसिस पे वो फेस कर रहे हैं, तो हमको उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, और आपस में पार्टी के बीच में लड़ाई की जरूरत नहीं है, हमको बेटर पार्टी बन के सामने आने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो भी लिबरल पार्टी की जो चीजें हैं वो काफी फेल हो गई हैं, जो तीनों ने ही बात की, रोमन बाबर ने भी उसके ऊपर कहा कि जी ये जो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है फर्स्ट नेशंस को, ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, पासपोर्ट के जो मसले हैं, इन सब के ऊपर भी जो है काम ज्यादा करने की जरूरत है, और लिबरल गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं किया। रोमन बाबर ने कहा जी कि मैं कभी भी इलेक्शंस जो हैं वो जीतना है सच नहीं, इतनी जोर से चाहता था और आना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुल्क के फ्यूचर के लिए मेरा आना जरूरी है, क्योंकि क्या क्या हुआ एक दिन कि एक दिन हम उठे तो हमें पता चला जी कि ट्रूडो साहब को फिर से री इलेक्ट कर लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, और सबसे जो वर्स्ट बात हुई कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड को फिर से वापस लेकर गवर्नमेंट के अंदर आ गए हैं। तो बहरहाल हमको जो है अपनी पार्टी के अंदर एटलीस्ट यूनिटी दिखानी चाहिए और चीजों को बेहतरी की तरफ आगे लेके जाना चाहिए। अच्छा, इनसे ना एंड पे पूछा गया, माजिद भाई बिल्कुल जो डिबेट की एंड हुई ना, तो वो कुछ जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हार गए तो क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे? तो एचएसएन और जो रोमन बाबर थे उन्होंने तो बिल्कुल क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी हाँ हम तो वी विल कीप ऑन सपोर्टिंग एंड यू नो द पार्टी एंड वी विल स्टे विद इट। लेकिन जब जॉन शेरे से पूछा गया ना तो उन्होंने जरा थोड़ा सा डॉज कर दिया क्वेश्चन, तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल विनिंग की तरफ देख रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं और ऐसा
नहीं, मगर उनका कहने का मकसद ये था, मैं भी वॉच कर रहा था उसको, इनका कहने का मकसद ये था जॉन शेरे का कि भाई उनसे उनका ख्याल ये था कि ये पूछ रहे हैं कि अगर आप हार गए तो क्या आप कंटिन्यू करेंगे अपनी जो सियासत है सियासत को, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो अपनी विनिंग की तरफ देख रहा हूं, मगर ये कि सवाल करने का करने वाले का मकसद ये था पूछने का कि भाई आप
पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे या नहीं,
पार्टी के साथ लॉयल की जगह आप अपने क्या सियासत करते रहेंगे, या क्योंकि आपने इससे पहले भी लीडरशिप में आए थे आप, यू हार गए आप, इसके बाद फिर आप जब प्रीमियर ऑफ ओंटारियो का क्वेबेक का इलेक्शन लड़ा फिर भी आप हार गए, तो अब ये तीसरा मौका है आपका, तो क्या आप इसके बाद खैरबाद कहेंगे सियासत को? तो उन्होंने हाँ नहीं में जवाब दिया।
हाँ, लेकिन मुझे क्या लग रहा है माजिद भाई, आई हैव अ वेरी वियर्ड फीलिंग, मुझे लग रहा है कि ये तीनों ही नहीं जीतेंगे। ये जो 10 सितंबर को इनकी लीडरशिप रेस होने वाली है, मुझे लगता है कि पियर पॉरवर शायद जीत सकता है, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत सारा
लोगों का ये कहना है, क्योंकि कल की जो ये डिबेट आई है ना, इसमें देखें 160,000 जो इनके जो वोटर्स हैं ऑल टुगेदर देखें अबाउट 250,000
है ना,
तो उसमें से 160,000 तो ऑलरेडी मेल इन कर चुके हैं
जी 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 जी,
तो मोर देन हाफ इज ऑलरेडी मेल्ड इन, तो अगर ये एक और डिबेट करते हैं तो पीपल दे कैन नॉट चेंज देयर माइंड, और ये कि अगर पियर पॉल नहीं आते यहाँ पर तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता इतना, मगर मेन चीज थी कि पियर पॉलिवर को जो जिसने भी कहा होगा एडवाइजर जो उनके, उन्होंने कहा यार $50,000 दे दो मगर
लोगों के साथ जुड़े रहो,
जाओ जाओ नहीं जाने की डिबेट वगैरह मत जाओ कि मुंह से कोई ऐसी
गलत आखिरी वक्त में बात निकल गई, हाँ तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और ये इन्होंने कहा भी वैसे तो, मगर देखें अब क्या होता है, तो ऐसे है तो बहरहाल वो नहीं आए तो लोगों ने जरा थोड़ा महसूस किया उनकी कमी को, लेकिन मुझे यही लगता है कि लीडरशिप रेस इन तीनों की जो कल मैंने
अब ये कहा जा रहा है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो फर्स्ट बैलेट में जीतेंगे, यस दे नीड अ सेकंड बैलेट, मतलब लोगों ने ऑलरेडी उनको विनर कह दिया है कि भाई व्हाट डू यू थिंक दैट यू नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इज ही गोना विन द फर्स्ट बैलेट और दे नीड अ सेकंड और थर्ड बैलेट टू विन,
बिल्कुल ठीक है, चलें देखते हैं। अच्छा जनाब, एक और रिपोर्ट आ जाइए मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑन्टेरियो से, और आज इन्होंने भी कहा है कि हमको कुछ करने की जरूरत है ताकि लोग जो हैं इन प्रोफेशंस के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आज इन्होंने बात की है जो लैब के जो असिस्टेंट्स और लैब के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में, जस्ट लाइक द नर्सेज एंड डॉक्टर्स, उन्होंने कहा जी कि हमने एक सर्वे किया है और उसमें हमें पता चला है कि बहुत सारे जो लैब एसोसिएट्स हैं वो भी छोड़ने का सोच रहे हैं, 70% वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वो सोच रहे हैं कि वो छोड़ के चले जाएं अपना ये प्रोफेशन, क्योंकि उनके अंदर भी बर्न आउट आ गया है नर्सेज की तरह, और 9% जो है वो फील कर रहे हैं बर्न आउट, तो वो कहते हैं जी कि हम डबल डबल शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, हैं, वी आर टायर्ड इवन टू कम इन, और जैसे ही हम छुट्टी करके जाने लगते हैं तो कोई ना कोई हमें कह देता है कि नहीं तुम रुक जाओ. तो अब वो क्या करने लगे हैं, इसने एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन ने बताया है कि अब वो किसी और से फोन करवा देते हैं कि नहीं जी मैं बीमार हूं, मैंने आज नहीं आ रहा, यू नो, जस्ट टू टेक द डे ऑफ. और नाइट शिफ्ट करते हैं और पूरे पूरा दिन काम करते रहते हैं, तो इनके लिए बहुत लॉन्ग हो गए हैं ड्यूटी आवर्स, तो हमें कुछ बहुत ज्यादा जल्दी
प्रेशर, मोर प्रेशर आएगा अगर ये लैब के जो लोग हैं अगर ये भी छोड़ के चले जाएंगे,
टेस्टों के रिजल्ट ही नहीं आएंगे,
नहीं आएंगे,
तो और मुश्किल आ जाएगी. तो बस ये बात है. तो मैंने पहले भी कहा था टूरो साहब पैन उनते तुसी छुट्टी ते चले गए हो, बहरहाल अगर कोई थोड़ा बंदा सुन रहा है प्लीज पाकिस्तान को कांटेक्ट करें, बेशुमार नर्सें, बेशुमार डॉक्टर, बेशुमार लैब असिस्टेंट और आपके मुल्क से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और लायक बंदे हैं वहां पाकिस्तान में, उनको बुला लें और उनको उनसे आप काम करवा लें. और एक तो वो जो है ना आपके यहां पे वो बैठ के जो सरकारी दफ्तरों की तरह जो लोग काम करते हैं वैसे वो काम भी नहीं करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे, तो आपके काम भी जल्दी जल्दी होंगे.
Exactly.
तो आप बुला लें पाकिस्तान से, लेकिन अपना वो जो आपने वो पहना हुआ है ना वो घोड़े वाला जो सिर्फ आपको एक सीधी बस वो उसमें दिखा रहा है, जरा वो उसको हटा लें ब्लिंकर्स को ताकि वो आपको नजर आ जाए कि एक पाकिस्तान भी मुल्क है दुनिया में, बड़े लायक वहां पे लोग हैं, उधर से आप बंदे मंगवा लें. बहरहाल जी हम कह ही सकते हैं. अच्छा जनाब, आज टोरंटो रियल एस्टेट जो बोर्ड है उसकी आज एक रिपोर्ट फिर से आई है और इसके मुताबिक जो है जुलाई के सेल्स फेल बाय 47% फ्रॉम लास्ट ईयर जुलाई, 24% फ्रॉम दिस जून. तो वो कहते हैं जी कि इसके अलावा जो है लास्ट मंथ में जो सेल्स हुई हैं हाउसेज की 4212 हुई हैं, जो कि हैफ है बिल्कुल ऑफ 9339 होम्स जो के हुई थी लास्ट जुलाई में. और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि जो होम प्राइसेस हैं वो जो स्लाइटली जो थी वो 1 मिलियन को टच कर रही थी लास्ट मंथ, उसमें थोड़ा सा राइज आया है 1% का. तो अगर पिछले महीने जो थी वो या पिछले साल जो थी जुलाई 2021 में 1.061724, तो अब जो है वो 1.074754 जो है उसके ऊपर है. और उन्होंने कहा जी कि ये जो लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा जो है 6% का ड्रॉप आया है फ्रॉम
जून टू जुलाई 6% का ड्रॉप आया है. लास्ट ईयर दिस टाइम अगर देखें आप जुलाई ऑफ 2021
तो ऊपर गई है प्राइस 1%
जी ऊपर है. मगर उसका ये भी देखा जा सकता है कि the prices the way it was going up it is not come down yet
fast. अच्छा detached homes जो हैं उनको सबसे ज्यादा हिट मिला है क्योंकि detached homes जो हैं उनकी prices 3% डाउन आई हैं और year on year basis के ऊपर और उसके compared to last month. और फिर उन्होंने कहा जी कि जो sales हैं वो भी काफी सारी नीचे आ गई हैं, 46% जो हैं उससे नीचे आई हैं sales. इसके अलावा जो semi detached homes हैं वो कहते हैं जी उनकी market ठीक है क्योंकि उनकी price जो है ऊपर गई है, उनकी प्राइस ऊपर गई है तो और जो है 5% से. और जो टाउन होम्स हैं वो हैं वो भी उनकी भी सेल्स ठीक चल रही हैं, वो भी 6% से ऊपर गए हैं. इसके अलावा जो कॉन्डो की प्राइसेस हैं वो भी 7% से ऊपर गई हैं. तो ये जो है उन्होंने कहा जी कि बस मिला जुला रुझान है यानी कि और कुछ जो सेक्टर्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, कुछ नहीं कर रहे.
मगर ये भी है ना कि डिमांड लोगों की ज्यादा है खरीदने के लिए मगर लिस्टिंग ही नहीं है क्योंकि बहुत सारी लिस्टिंग्स जो है लोगों ने वापस ले ली.
या
स्पेशली कॉन्डोज की क्योंकि कॉन्डोज में जो है अगर आप देखें तो लोग देखते हैं कि भाई अगर $3,000 मुझे मंथली इसका मिलता है जो किराया रेंट so I may as well rent it for now and wait for the price to go up.
Yes, that's right. बिल्कुल ठीक है. लेकिन जिनके पास पैसे हैं इस वक्त जी ये बिल्कुल ये buyers market बनी हुई है तो जिनके पास पैसे हैं और जो invest करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है ये, बहुत अच्छा वक्त है. अच्छा जनाब AFP की आज एक रिपोर्ट है और कल भी हमने आपको ये थोड़ी सी खबर सुनाई थी और अब हम इसको और आगे डिटेल थोड़ी सी लेके जाते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
UK, Switzerland, ate Italy to baad, Khalistan referendum diyan votaan da agla pada, Canada. Canada vich Khalistan referendum diyan votaan da pehla center, 18 September din aitwar nu Toronto vich lagega. Voting center di location janan layi, jaan hor jaankari len layi, sampark karo 437-423-2669, 437-423-2669.
ट्रैकिंग वाले वीरों ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL बिकॉज वी केयर।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नू मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नू कॉल करो, 416-655-2000।
नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो बड़े मान नाल पेश करदे ने 29वां कैनेडा कबड्डी कप 2022। शनिवार 6 अगस्त नू हैमिल्टन दे फर्स्ट ऑन्टेरियो सेंटर विखे भाग ले रहियां टीमां पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, USA, कैनेडा ईस्ट अते कैनेडा वेस्ट। जानकारी लई कॉल करो हरमन चाहल 416-648-5050 जां सुखविंदर मान 416-617-2405। 29वां कैनेडा कबड्डी कप 2022।
विलेज स्टेज ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40,000 आइटम्स के साथ एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को, कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर। और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी। पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 905-232-3663, 647-774-4888। विलेज टेस्ट।
चलो चलिए ताजिया सब्जियां लैन अपने फार्म कैलेडन सब्जी फार्म ते, आज ही आओ ते खरीदो स्पेशल डिस्काउंट ते ताजे चप्पन कद्दू, किया, साग, पालक, मेथी, धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, गाजर ते होर दूसरियां सब्जियां ते फल भी। इत्थे सब्जियां ते फलां दे बूटे, खाद, गार्डनिंग दा समान, पॉट्स, इंडियन तंदूर अते इंडियन बाईसाइकिल भी मौजूद है। होर जानकारी लई विजिट करो कैलेडन सब्जी फार्म, 12050 एयरपोर्ट रोड, जां फिर कांटेक्ट करो 905-965-3633। That's 905-965-3633।
जी
हाँ जी, AFP की रिपोर्ट है माजिद भाई, और ये सबसे पहले सुबह आई है। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि अब चाइना ने कहा था, जो मिस नैन्सी पेलोसी ने इधर ताइवान का टूर किया था, कि आप जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके आप खुद ही फेस करेंगे। और हमने अब कल बताया था कि कुछ इन्होंने जो है वो एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। आज चाइना ने 6 डिफरेंट प्लेसेज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया था, जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो है, और वहां पे उन्होंने अपने मिसाइल्स जो हैं वो मारे हैं। बल्कि जापान ने भी जो है उसकी शिकायत की है कि शायद हमारे भी किसी एक इलाके में ये एंटर हो सकता था, इनका जो मिसल है। तो इन्होंने कहा जी कि ये हम अब जितने भी ये जो रेलेवेंट एयर जो जो क्राफ्ट्स और बाकी के जो थे शिप्स थे, उनको कहा गया था कि भाई इन जगहों के ऊपर आप बिल्कुल ना आए, बिल्कुल हट जाएं यहां से, क्योंकि ये सम जो है ये स्मॉल प्रोजेक्टाइल्स जो है आपको फ्लाई करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज वी हैव स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइजेस इन द इन ये जो मैंने आपको बताया 6 डिफरेंट पोजिशंस जो है, वो इनको मल्टीपल जोन कह रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने शुरू की है। ताइवान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जी हम ये ड्रिल्स को बहुत क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और इसी के खतरे के पीछे ताइवान ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो चाइना को वो बंद कर दी हैं कि कहीं उसको कोई मिसल जो है वो हिट ना कर जाए। और लेकिन अब ये तो चाइना और ताइवान के बीच में है, दुनिया जो है वो इसलिए परेशान है कि ताइवान मेड प्रोसेसर चिप्स जो हैं, जो कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ग्लोबल टेलीकॉम और ऑटो इंडस्ट्री को दी जाती हैं, ये खतरा पड़ गया है कि कहीं उसके फ्लोज के अंदर डिसरप्शन ना आ जाए। इसके अलावा जो चाइना है उसने ये कहा है कि जी हम बिल्कुल इसको अब इफेक्टिवली ताइवान को ब्लॉकेड की तरफ लेके जाएंगे, और जो कुछ इन्होंने किया है वो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि वो इनको अपना एक टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं, अपना एक प्रोविंस मानते हैं।
शाविद जी, चिप का तो आपने जैसे जिक्र किया है, तो यू एंड आई बोथ नो कि जब लास्ट टाइम जब चिप का प्रॉब्लम आया था वो आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ।
हाँ जी,
है ना,
बिल्कुल।
और अगर ये थोड़ा ये जो ब्लॉकेड है अगर इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया तो देन पूरी दुनिया में फिर वही चिप का प्रॉब्लम आएगा, फिर वो गाड़ियां नहीं बननी, फिर ले ऑफ शुरू हो जाएंगे,
टेलीकॉम्स में प्रॉब्लम आ जाएंगे, हर इंडस्ट्री है,
एवरीवेयर एवरीवेयर दे यूज दोस चिप्स इन एवरीवेयर. एंड हु इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर? इज ताइवान. ताइवान इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट चिप्स पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल होती है
प्रोसेसिंग चिप्स.
तो फिर वो जब आप तो अभी कह रहे ना कि हम रिसेशन नहीं आया है और आ रहा है और नहीं आया है और आ रहा है, आप देख लीजिएगा कि फिर रिसेशन तो ओपन रिसेशन होगा.
भाई हमने तो चार महीने पहले ही कह दिया था कि रिसेशन आ रहा है. हमने तो चार महीने पहले ही कह दिया रिसेशन आ रहा है.
आज जो है वो इंग्लैंड ने भी कहा है कि हम अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं एंड हैवी ड्यूटी किस्म का बढ़ा रहे हैं, जो 27 साल में कभी इतना बढ़ाया नहीं है उन्होंने. तो ये चीजें जो ना इनको दे हैव टू लुक एट जो चाइना
ग्लोबल चैलेंजेस जो
चाइना ने कहा ना कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे एंड दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट.
या और आप देखें ना, अब वो छोटा सा तो मुल्क है वो ताइवान, बिल्कुल टिड्डी जितना, उसमें भी अगर छह जगह उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दिए हैं और उसको मिलिट्री वो ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं. तो यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन में भी वो तो एक्सरसाइजेज होती है ना, तो ये मिसल्स जो उड़ रहे हैं इसका क्या मतलब मकसद
लाइव एमिनेशन?
हाँ, एमिनेशन यूज किया जा रहा है. ठीक है जी, तो अब भाई क्या मतलब है इसका, आपको खुद समझना चाहिए. अच्छा, अब अमेरिका का जो है ना हमेशा यही होता है, हर जगह के ऊपर ना स्यापा डाल के फिर उधर से जो है ना क्वाइटली उठ के आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है और फिर अपने आप को सच्चा बोलना है. तो ये जो है ना, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. तो हमने हजार बातें यहां पे हम करते थे लेकिन हम कभी ट्रंप साहब को इस तरह से, उनकी बातों पे हंसी आती थी बहुत, वो मतलब है एक वो शोर लगा रहता था. लेकिन वो जो उन्होंने वॉर्स बंद की थी ना दुनिया में माजिद भाई, वो इसीलिए की थी कि जो मुल्क दुनिया जो है वो स्मूथली चलता रहे और अपना खुद का मुल्क भी स्मूथली चलता रहे. अब देखें जरा, इतना पैसा भी स्पेंड कर रहे हैं, इतना बेतहाशा इस वॉर के ऊपर, अननेसेसरी वॉर है और हर किसी को प्रोवोक किया हुआ है, रशिया को प्रोवोक किया हुआ है, चाइना को प्रोवोक किया हुआ है. भाई व्हाट फॉर, व्हाट फॉर, अपने मुल्क में चैन से बैठो, ऑलरेडी पेंडेमिक से भी आप लोग गुजरे हो और इस तरह. चलो जी, अच्छा जनाब, लग्जरी इटालियन ऑटोमेकर जो फरारी है जी, फरारी ने कहा जी हमें तो कोई पेंडेमिक का इस सच असर अब नजर नहीं आ रहा है, कभी किसी जमाने में आया तो हमें नजर, यानी दो साल पहले, अब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इतने कोई बेतहाशा इनके पास ऑर्डर्स आ गए, ऑर्डर्स आ गए हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमारी जो सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स हैं वो 22% इंक्रीज कर गई हैं. और इन्होंने कहा जी कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है यानी कि सारे हमारे खर्चे निकालने के बाद $257 मिलियन को टच किया था यूएस इन अप्रैल, और जो था अब जून में और रेवेन्यूज जो ऊपर चले गए हैं. तो ऑल टुगेदर अब तक एज वी स्पीक रेवेन्यूज जो हैं 1.29 बिलियन यूरोस को टच कर रहे हैं. और वो कहते हैं जी कि शिपमेंट्स जो हैं हमारी 29% इंक्रीज कर गई हैं और इस वक्त हमारे पास 3455 व्हीकल्स के ऑर्डर्स हैं.
क्या बात है.
और जबकि आई मीन कीपिंग इन व्यू के बाकी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो रही है और नीचे आ रही है, वो कह रहे हैं जी कि हमारी सेल्स जो हैं वो डबल हो गई हैं. अभी जो हमने ये जो दो क्वार्टर्स की बात की है, हमारे पास पहले 649 650 इतने ऑर्डर्स होते थे, इस वक्त हमारे पास जो थे जो अब हम जो ये पहले जो 6-7 महीने थे उसके अंदर हमारे पास डबल हो गई थी जो हमारे पास आए थे ऑर्डर्स आए थे 1053 कार्स के हमारे पास आए थे. तो कहते हैं कभी हमारे पास इतनी गाड़ियां बनाने के ऑर्डर्स आते नहीं थे, 650 ऐसे आते थे. तो अब ये हजार से भी ऊपर जो है ये जा रहे हैं. तो ऑल टुगेदर जो है वो कहते हैं हमारे पास जो है ओवर 3000 कार्स, यानी 3455.
मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत है,
पैसा बहुत है. खासतौर पर ये गाड़ियां ज्यादातर जो है जी मिडल ईस्ट जा रही हैं, तो यू कैन इमेजिन है जी.
वहां तो इन्फ्लेशन नहीं है
ना? नहीं नहीं नहीं, वहां पे कोई नहीं है. लेकिन आहिस्ता बोले, सुन ना ले, अमरीका ने वहां फिर एक लड़ाई शुरू कर देनी है मिडल ईस्ट में प्लीज. अच्छा जनाब, आज टर्किश स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसने आज अनाउंस किया है कि तुर्की में भी रिसेशन आ रहा है. हैं जी, उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन हैज रिजन 24-year high टू, कैन यू इमेजिन टू हाउ मच, 79.6%.
वाओ,
कैन यू इवन इमेजिन. तो इनका लीरा तो लीरो लीर हो गया बिल्कुल. है, ये तो लीरे ही बन गई हैं, अब ये लीरा लीरे बन गई हैं, कोई वैल्यू नहीं रही, जीरो पे आ गई है इसकी. तो जनाब जितने भी कनेडियन हैं जा सकते हैं वेकेशन के लिए टर्की. वैसे मैं टूडो साहब को भी कहना चाहती थी, टूडो साहब इतने महंगे मुल्क में क्यों जा रहे हो, टर्की जाओ.
जी.
सिर्फ आपने $500 लेके जाने, 50,000 का खर्चा नहीं है. ਪੰਜ ਸੌ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਓ ਪੀਓ,
5 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣ ਜਾਏਗੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸਮੇ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕਰੂ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਏ ਪੀਏਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ, $500 ਓਨਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੋ 79.6% ਕੋ ਯੇ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਲੀਰਾ ਹੈ ਵੋ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਵੋ ਗ੍ਰੈਜੁਅਲੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟਸ ਮੇਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਉਸਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 500 basis points ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੋ ਕੀਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਇਟ ਟੂ 14%, ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 2.37% ਸੇ ਉਪਰ ਗਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜੁਲਾਈ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਖਤਰੇ ਮੇਂ ਨਾਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੋਇਟਰਸ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮਾਜਦ ਭਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸਨੇ 27 ਈਅਰਸ ਮੇਂ ਫਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਉਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 13% ਕੋ ਅਬ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮਕੋ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੇ ਜੋ ਬੜਾਇਆ ਹੈ, ਯੇ ਡਿਸੰਬਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਸੰਬਰ 2021 ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਬ ਤੱਕ 6 ਦਫਾ ਯੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ ਜੋ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਬੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਿੰਸ 1995 ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ, ਜੋ ਜਿਸਕੀ ਕੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਕੋਨਮੀ 4th quarter ਤੱਕ ਜਾਤੇ ਜਾਤੇ ਇਤਨੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਈਵਨ 2023 ਮੇਂ ਵੀ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਹੀ ਜੋ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 3 quarters ਮੇਂ ਅਗਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜੋ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲ ਮੇਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਅਬ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ 4th quarter ਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੋ ਯੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਅਬ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥੀ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਯੇ ਟਫ ਟਾਈਮਸ ਆਏ ਥੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕੇ, 37 billion pounds ਕਾ ਹਮਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿਆ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜੋ ਥੇ, ਮੋਸਟ ਵਲਨਰੇਬਲ, ਉਨਕੋ 1200 pounds ਕੇ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ $400 ਕੇ ਹਮ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਸ ਕੇ ਉਪਰ। ਤੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ
ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸਰਬ
ਸਰਬ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਊਂਡਸ, ਸੋ ਪਾਊਂਡਸ ਇਜ਼, ਤੋ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੀ ਹਮਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕੀ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕੀ, ਤੋ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਵੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਆਜ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਮਸਨ ਰੋਇਟਰਸ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸਕੀ ਹਮ ਅਕਸਰ ਯੇ ਖਬਰੇਂ ਵੀ ਆਪਕੇ ਵੀ ਰੋਇਟਰਸ ਕੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਮਸਨ ਰੋਇਟਰਸ ਕੇ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪੇ ਹੈ ਜੀ ਆਜ, ਵਨ ਡੇ, ਅਭੀ ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵਨ ਡੇ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਪੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀ ਥੀ, ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਫੇਅਰਲੀ ਆਪਨੇ ਉਸਕੋ ਡੀਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾਜ਼ ਨਿਊ ਗਿਲਡ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਕਿ 90% ਆਫ 300 ਜੋ ਰੋਇਟਰਸ ਕੇ ਐਮਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਵੋ ਸਭ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ 3-year ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋ ਕਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਹਮਨੇ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੇ, ਜਿਸਮੇ ਕਿ ਰਾਈਟਰਸ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨ ਸਭਕੋ ਪੇ ਰੇਜ ਵੀ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਸਿਰਫ 1% ਦਿਆ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 9% ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਅਬ ਹਮ, ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਤੋ USA ਕਾ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਬ ਹਮ ਆਪਕਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਲੇਂਗੇ। ਹੈ ਜੀ,
ਮਗਰ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ
ਇਤਨੀ ਹਿਊਜ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੇ
ਜ਼ਰਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਵੇਜਸ।
ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਮਾਜਦ ਭਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ?
7% ਕੁਛ,
7%। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਯੇ ਜੋ ਹੈ 7% ਕੇ ਅਗੇ,
ਅਗਰ 9% ਪੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਤ,
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਮੂਨੀ ਖੋਲਨਾ,
ਅਭੀ ਮੂਨੀ ਖੋਲਨਾ।
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ,
ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮ ਲੋਗ
ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਓਕੇ, ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਯੇ ਆਜ ਕੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੜਾ, ਵਹੀ ਜੋ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਏਮਨ ਅਲ-ਜ਼ੁਹੈਰੀ ਕੀ ਡੈਥ ਕੋ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਜ ਓਫੀਸ਼ਲੀ ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿ ਯੇ ਵੈਸੇ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਡਰੋਨ ਕਾ ਅਟੈਕ ਕੀਆ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਕੋ ਖਰਾਬ ਕੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਜੋ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਜੀ ਯੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਾ ਔਰ ਹਮਕੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਯੇ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਥਾ USA ਕਾ, ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹਮੇਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਹਮੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਏਮਨ ਅਲ-ਜ਼ੁਹੈਰੀ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਮਨ ਅਲ-ਜ਼ੁਹੈਰੀ ਜਿਸਕੋ ਕਿ ਆਪਨੇ ਉਸ ਘਰ ਕੀ ਬੈਲਕਨੀ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਔਰ ਮਾਰਾ ਹੈ, ਵੋ ਆਦਮੀ ਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਹੈ उसको कहा है कि एक अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन बढ़ाओ बिठाओ और हमको जो है पता चलना चाहिए कि ये आदमी कौन था। और उन्होंने लेकिन आज ये भी अनाउंसमेंट किया है और अमेरिकन गवर्नमेंट को भी बताने की कोशिश की है, उन्होंने कहा जी कि अफगान सॉयल से किसी कंट्री को कोई खतरा नहीं है क्योंकि हम जो है कोई किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो एमन अल ज़ुहरी की डेथ है उसको हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कन्फर्म कि अमेरिका ने हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए हमारे पे ड्रोन का हमला किया था। ओके जी, आज बड़ी ही एक खूबसूरत डिस्कशन है। अगर आप ने कभी लेक्चर सुने हैं शशि थरूर साहब के, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, ब्यूटीफुली ही स्पीक्स एंड अमेजिंग नॉलेज दैट पर्सन हैज, उनका आज इंटरव्यू लिया है जी द वायर वालों ने। 36 मिनट्स का इंटरव्यू है ये, जो कि उनके सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर साहब ने लिया है। ओहो हो, देखो जी शशि थरूर को जो हमारा टीवी देख रहे हैं, व्हाट अ हैंडसम मैन। अच्छा जी, खैर बहुत ही काबिल इंसान है शशि थरूर साहब, बहुत सारा इन्होंने बुक्स लिखी हैं, बड़े जबरदस्त राइटर हैं। तो इनसे आज इन्होंने पूछा है कि भाई 75 ईयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को होने वाले हैं, करण थापर साहब ने कहा, तो ये हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तो शशि थरूर साहब ने कहा जी कि हम सबको ये जो हमारी बिगटरी जो अब इतनी ज्यादा हिंदुस्तान में चल रही है उसके लिए हम सबको कलेक्टिवली ब्लेम देना चाहिए और मुल्क जो है उसके अंदर ये जो पोलराइजेशन फैल रही है ये बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान का जो साउथ है उसके अंदर अभी भी आप एक बीकन ऑफ होप देख सकते हैं क्योंकि वहां पे लोग लोगों को पकड़ते हैं, पूछते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्यों गलत फैसला लिया, मुसलमानों को क्यों दीवार के साथ लगा रहे हो। तो अभी भी जो साउथ ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ आप उम्मीद की तरफ से देख सकते हैं। वो कहते हैं जी कि इसका फिर हल क्या है, करण थापर साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी कि मोदी जी को स्टेप अप करना पड़ेगा और उनको अपने तमाम ये जो मेजोरिटेरियनिज्म और हिंदुत्व नेशनलिज्म के ये जो फैसले करते हैं उनको रिवर्स करना पड़ेगा और उनको अपने आप को बताना पड़ेगा कि इंडिया को पोलराइज करके मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता हूं, मैं इलेक्शन उसके बगैर भी जीत सकता हूं। इसके अलावा शशि थरूर साहब ने कहा जी कि हमारी एक कमिटमेंट है इंडिया की दुनिया के साथ डेमोक्रेसी की कि हम इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने देंगे और दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो है वो विच इज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसका कॉर्नर स्टोन हमारा जो पहला प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू उसने रखा था। तो उस प्रिंसिपल्स को हम अपहोल्ड करते हुए इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी चलाते हैं। वो कहते हैं कि हां मैं मुझे पता है कि नेहरू साहब से कुछ गलतियां हुई, द वे ही डेल्ट विद चाइना जिसकी की वजह से हमें 1962 में बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट चाइना के हाथों में हुई। हां मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी ने जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी उसने इंडिया का जो डेमोक्रेटिक स्टेटस था और जो क्रेडेंशियल्स थे उसको बर्बाद किया, लेकिन फिर उसने उस चीज को संभाला देने के लिए इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शंस भी कराए। लेकिन उन्होंने कहा जी कि अगर ये इसका आउटकम लेकिन एक अच्छा भी हुआ वो ये कि हमारे मुल्क में फिर मीडिया 1975 के बाद बहुत ज्यादा फ्री हो गया और उसने फिर दुनिया को बताया कि फ्री मीडिया क्या होता है। एंड ही वॉजंट टॉकिंग अबाउट नाउ, वो कहने लगे कि अब जो है फिर से जो है मीडिया में ठीक नहीं चल रही हैं चीजें। फिर उन्होंने कहा जी कि आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या चीज जो है हिंदुस्तान में जोड़ती है कि यानी कि इज इंडिया डूइंग सो बैड। तो शशि थरूर साहब ने कहा कि नहीं, इंडिया इतना भी बैड नहीं कर रहा जितना हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हम चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, तो हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज, हमारी कुजीन, हमारा जो कल्चर है हम लोगों को जोड़ता है जिसकी वजह से 1947 में जो हमारे बीच में डिवाइड आई थी, लेकिन अब हिंदुस्तान का जो कल्चर और हमारा जो लैंग्वेज और हमारा जो कुजीन और चीजें जो है इतनी स्ट्रांग है कि हम एक इंडियन आइडेंटिटी की वजह से अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं जो हमने क्रिएट की ओवर द इयर्स। वो कहते हैं हाँ जी मुसलमानों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में आप क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, मुसलमानों को ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है ट्रीट और उनको पब्लिक जो स्पेसेस हैं उनके अंदर नहीं ज्यादा जो है आगे दिया जा रहा है जिसको कि हमको बहुत ही करना पड़ेगा, इफेक्टिवली डील करना पड़ेगा वरना सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा रिफ्ट्स आ जाएंगी, पार्लियामेंट सही से काम नहीं कर रहा है, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं हमको उसका जवाब नहीं दिया जाता है, इसको हमें करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है उसको जो है थोड़ा सा टॉलरेंस डायसेंट की अगेंस्ट दिखाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा जी कि ये बिला वजह के जो एक्यूजेशन कोई भी जो हुकूमत पे उठाता है आवाज उस पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है विच इज नॉट रियली राइट क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से ठीक नहीं है। तो लेकिन उन्होंने फिर और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की कि 25 साल में मैं मुल्क को किधर देखता हूं और मतलब इट्स सच अ ब्यूटिफुल टॉक. You must listen to that talk, Majid bhai. Just about half an hour, 36 minutes only. Karan Thapar ke saath unka jo hai, unki English sunen zara aap. Wow, kya matlab hai? Oxford ka bhi koi gora aisi angrezi bolta hoga. Beautiful. To wo aap sunen, aapko bahut maza aayega. Hindustan ke andar ji, National Investigation Agency NIA jo hai, usne Saleem Qureshi, jo ke Daud Ibrahim ke bada close ally, jo chota shakil tha, उसके साथी को जनाब आज मुंबई के अंदर पकड़ा है. इसको मई के अंदर डिटेन किया गया था जब दाऊद इब्राहिम की सारी जो चीजें रिलेटेड उससे थी उन पे रेड्स किए जा रहे थे 20 प्लेसेस इन मुंबई, और उस वक्त भी इसको पकड़ा था और ये फिर जो है वो इनके हाथ में नहीं आया था. लेकिन अब जो है इसको राइट हैंड मैन जिसको कहा जाता है दाऊद इब्राहिम का छोटा शकील, उसका ये जो है क्लोज रिलेटिव है, और इसके खिलाफ जो है अब एफआईआर भी लिखी गई है. एफआईआर जो है दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ भी अब लिखी गई है, और अब ये समझा जा रहा है कि ये की आदमी जो पकड़ा गया है, क्योंकि ये रिलेटिव है छोटा शकील का, तो पता चलेगा कि बाकी के लोग जो है इनके एड्स जो है क्या है, किधर है, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं. तो उसमें जाहिर है कि एनआईए ने इशारा पाकिस्तान की तरफ करने की कोशिश की है, लेकिन जाहिर है अभी इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है. पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो थे आज टांग के एरिया में थे, जो कि डीआई खान में है केपी के इलाके में, और वहां पे वो जो फ्लड से हिट लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की. उन्होंने कहा कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को क्लोजली काम करने की जरूरत है. उन्होंने तारीफ की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की. उन्होंने कहा जी हम लोगों को हेल्प हमें इस वक्त करने की जरूरत है, क्योंकि लोग बहुत सारे मर गए हैं और बहुत सारे उनके हाउस होल्ड जो हैं वो बह गए हैं और एनिमल्स भी बह गए हैं. तो उन्होंने कहा है जी कि तकरीबन 8 लाख जो है वो जो डिसीज्ड फैमिली है उसको दिए जाएं, और जो है 10 लाख के करीब जो है जो 8 लाख है वो कॉम्पेंसेशन दी जाए उन लोगों को जिनका सब कुछ बह गया और उनके वो जिंदा हैं, और डिसीज जो है उसको 10 लाख रुपए जो दिए जाए, जैसे कि बलोच गवर्नमेंट कर रही है. इसके अलावा जो इंजर्ड है उनको 25,000 से लेकर 250,000 तक पैसे दिए जाएंगे, और 500,000 दिया जाएगा जो घर बिल्कुल कंप्लीटली डिमोलिश हो गए हैं, और 200,000 जो पार्शली डैमेज हुए हैं. और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि भाई जिन लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं घर बनाने में उनको घर बना दें. कल हमने आपको बताया था कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है, और इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर, उनके खिलाफ जो है वो करेंगे मोर्चा निकालेंगे. तो उनको कल राणा सनाउल्ला साहब ने कहा था कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके के साथ बड़ा सख्ती से डील किया जाएगा. तो उसके बाद जो है फिर इमरान खान साहब ने एक अपने ट्विटर के ऊपर अपने सपोर्टर्स को कहा था कि भाई ये जो है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि राणा सनाउल्ला ने भी मेंशन किया था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा है कि आप ये मोर्चे जो है सिर्फ F9 पार्क में निकाल सकते हैं, तो आप लोग सब F9 पार्क में आए और ना तो ECP जो है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के पास जाएं, और ना ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा है उनके पास जाएं. तो एज अ रिजल्ट वहां पे पार्क में आज जो है प्रोटेस्ट स्टेज किया गया था. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी कुछ दिन पहले असद उमर साहब ने एक पिटीशन डाली थी, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो आपने 11 सिर्फ जो हैं वो इस्तीफे जो हमने दिए थे वो माने थे, तो हमने तो हमारे पूरे के पूरे 123 MNAs ने जो थे वो रेजिग्नेशंस दिए थे, लेकिन उसको जो है इस वक्त के स्पीकर ने मानने से इनकार कर दिया था. तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो है ये फिर से हियरिंग सुनी है, और उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट हियरिंग जो है वो अब अगस्त 16 के लिए कर दी है डिफर, और उन्होंने कहा कि उस वक्त आप सारी जो जो कोई पेपर्स जो कि कुछ पहली भी हियरिंग में मिसिंग थे वो अब दिखाए गए थे, कुछ और थे जो कि अब नेक्स्ट हियरिंग में दिखाए जाएंगे, और उन्होंने कहा जी कि वो आप करें और फिर उस पर फैसला किया जाएगा. क्योंकि पीटीआई के जो काउंसिल शोएब शाहीन साहब हैं उन्होंने कहा था जी कि जो सिटिंग डिप्टी स्पीकर हैं उनका कुछ मसला बनता नहीं है कि वो इस चीज को डिले करें या स्पीकर डिले करें, क्योंकि उस वक्त के डिप्टी स्पीकर ने इसको एक्सेप्ट किया था. तो अब के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी करना चाहिए, और ये सारी समरी जो है ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजनी चाहिए. इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, जैसे कि आपने भी अरफा बाजी की बात में भी सुना होगा जो हैदर मेहदी के साथ वो कर रही थी, कि ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये जो थी उनके उन्होंने जो फंड रेज किए थे अपने हॉस्पिटल के लिए वो 2012 में किए थे, जबकि ये सारे लॉज जो थे कि आप किसी फॉरेन कंपनी से आप कोई फंड्स नहीं ले सकते हैं वो लॉ 2017 में आया था. आज उसी चीज का उन्होंने जिक्र किया है, और बहुत खुल के उन्होंने आके जिक्र किया है. उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इल्लीगल नहीं है, ये इल्लीगल उस जमाने में उस वक्त होता अगर हम इन चीजों को 2012 में इंप्लीमेंट कर चुके होते, ये कहके कि भाई आपने किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग नहीं लेनी है. लिहाजा आरिफ नकवी जो कि दुबई बेस्ड बिजनेसमैन थे उन्होंने दो फंड रेजिंग डिनर्स 2012 में किए थे, और 2012 में जैसे कि बाकी सारी दुनिया की पॉलिटिकल पार्टीज डिनर्स करती हैं और उसके अंदर जो है वो फंड्स अपने लिए इंक्रीज लाती हैं, उसी तरह उसी पैटर्न पे हमने बाकी दुनिया के पैटर्न पे किया था और पाकिस्तान के अंदर ये लॉ नहीं था, ये लॉ जो है ये बाद में आया। इसके अलावा जो लोगों ने कहा कि ये जो है आरिफ नकवी इसके ऊपर तो खुद फ्रॉड के चार्जेस हैं, तो फ्रॉड के चार्जेस 2000 उन्होंने कहा जी 12 में नहीं थे आरिफ नकवी पे, फ्रॉड के चार्जेस उसके ऊपर 2018 में आए हैं। तो 2012 में मुझे नहीं पता था कि आरिफ नकवी पे 2018 में फ्रॉड के चार्जेस आएंगे। तो एज अ रिजल्ट ये जो आपका सारा केस मेरे अगेंस्ट है नल एंड वॉइड है, बल्कि हम थे वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने कहा था कि हर पार्टी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके फंड्स कहां से आते हैं। तो आप एक गलत तरीके से पीटीआई को सिर्फ वो कर रहे हैं और पीपीपी और पीएमएलएन के बारे में तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं, उसके ऊपर तो प्रोब बिठा ही नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है वो प्रोब बिठाएं तो आपको जरा थोड़ी सी सच्चाइयां नजर आएंगी। पीडीएम के जी जनाब कुछ जो एमएनएज हैं उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि इमरान खान साहब को पूरी तरह से बार कर दिया जाए कि वो आइंदा कभी कोई इलेक्शन जो है वो ना लड़ सकें। और आज इसकी जो पिटीशन है वो डाली है इन्होंने एमएनए बैरिस्टर मोहसिन नवाज रांझा और इनके पास जो थे सिग्नेचर्स जो थे वो थे लॉ मेकर्स आगा हसन बलोच, सलाउद्दीन अयूबी, अली गौहर खान, सैयद रफीउल्ला आगा, साद वसीम शेख की। और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को चूंकि ये फॉरेन फंडिंग केस में ये करप्शन इसकी सामने आ गई है इसलिए इसको कहा जो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए हमेशा के लिए पॉलिटिक्स में से। ठीक है जी, खुश है मजे
ठीक है जी।
अभी ये जनाब कुछ दिन पहले एक रिसेंट इंटरव्यू आया है सलमान खान साहब का और उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि भाई ऐसी क्या चीज है शाहरुख खान के पास जो आपके पास नहीं है। तो उसमें सलमान खान ने कहा उसके पास वो जो बंगलो है मन्नत वो मेरे पास नहीं है। और वो कहते हैं कि ये मन्नत का जो सौदा था सबसे पहले मेरे पास आया था। ये आपको पता ही है कि ये जो है मुंबई के बैंड्रा में है और ये सिक्स स्टोरी मैंशन है जिसको कि शाहरुख खान की वाइफ गौरी ने डिजाइन किया है। तो वो कहते हैं जी ये पहले मेरे पास आया था लेकिन जब मैं अपने वालिद साहब सलीम खान के पास गया तो उसने कहा इतने बड़े घर का क्या करोगे। तो अब मैं शाहरुख खान से पूछना चाहता हूं कि भाई तुम इतने बड़े घर का क्या करते हो। ये जो है जनाब मन्नत इसके अंदर आर्ट कलेक्शंस हैं, फैमिली मेमोरेबिलिया है और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 200 करोड़ इंडियन रुपीस है। तो ठीक है मजे भाई ये और जनाब इंडिया की जो मिस यूनिवर्स थी हरनाज संधु उनके ऊपर आज एक केस डाला है जो एक्टर प्रोड्यूसर उपासना सिंह है। वो कहती हैं जी मैंने इनको पहले फिल्म दी थी और मैंने इनको जब ये मिस वर्ल्ड नहीं भी मिस यूनिवर्स नहीं भी बनी थी तो लेकिन इन्होंने जो है शी हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इनको कहा था कि इन्होंने इनकी प्रमोशन करनी है लेकिन ये नहीं आई और अब ये जो है दूसरी एक फिल्म जो है बाई जी गुतंजे उनके ऊपर काम कर रही हैं जो कि अब रिलीज होगी अगस्त 19 पे। तो अब इनको जो है कोर्ट की तरफ से समन्स भेजे जाएंगे। और जनाब आज थी किशोर कुमार साहब की बर्थ एनिवर्सरी और आपको पता ही है कि 1946 में शिकार एक मूवी आई थी उससे इन्होंने अपना शुरू किया था फिल्मी करियर, एक्टिंग से शुरू की थी अपने भाई जो थे बड़े अशोक कुमार के कहने पे, लेकिन एक्टिंग में वैसे तो उन्होंने 100 फिल्म्स की लेकिन कुछ इनकी एक्टिंग चली नहीं क्योंकि ये इतने कोई सीरियस नहीं थे, ये ऐसे कोई ना कोई हरकत कर देते थे कि फिल्म का डायरेक्टर इनसे नाराज हो जाता था। और लेकिन सिंगिंग में अपना बहुत नाम बनाया एंड ही डाइड इन 1987। इन्होंने चार लेडीज जो हैं उनसे शादी की थी, एक थी रूमा घोष, योगिता बाली, मधुबाला, लीना चक्रवर्ती और इनके दो बच्चे हैं अमित कुमार और सुमित कुमार। तो आज लोगों ने जी इनको याद किया। पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट सम गुड न्यूज, ओ माई गॉड सम गुड न्यूज एटलीस्ट। जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं जनाब उसमें पाकिस्तान ने सही पट्टे चके हैं इस दफा। पाकिस्तान का जो वेट लिफ्टर है नूर दस्तगीर बट 24 साल उसकी जनाब उम्र है, ही हैज वन द फर्स्ट गोल्ड फॉर पाकिस्तान इन बर्मिंगम एंड उसने जो पीछे की जो तीन गेम्स हुई थी ये कॉमनवेल्थ की उसका रिकॉर्ड जो है इसने किया है शैटर किया है और इसने जो है 173 किया है और 232 जो है वो जर्क और एग्रीगेट और क्लीन सब के अंदर जो है इसने पॉइंट्स लिए हैं और रिकॉर्ड जो है वो खत्म किए हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने 2018 में इनको ब्रोंज मेडल मिला था लेकिन लास्ट ईयर के जो थे दिसंबर के जो इवेंट्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर विन किया था। तो अब जो स्पोर्ट्स बोर्ड है पाकिस्तान का, उसने इनके लिए जो है 5 मिलियन रुपीज के इनाम का किया है इनाम। इसके अलावा जी एक और खुशी की खबर यह है कि जुडोका शाह हुसैन जो है उसने जुडो के अंदर पाकिस्तान के लिए ब्रोंज मेडल जीता है जी, तो उसके लिए भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ने बोर्ड ने कहा है कि इसको भी जो है 1 मिलियन रुपीज दिए जाएंगे। तो एटलीस्ट सम गुड न्यूज फ्रॉम पाकिस्तान। एंड जनाब आज कॉट बिहाइंड जो यूट्यूब चैनल है राशिद लतीफ का, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। उसकी वजह यह है जनाब कि उन्होंने आज उस चैनल पे बात करते हुए अपने पे कहा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का फिर मैच होने वाला है अगस्त 28 में, उसमें पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे है और इंडिया जो है वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि उसमें पिछले एक साल में 7 कैप्टन्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं और इनके जो प्लेयर्स हैं बड़े दिग्गज किस्म के, जैसे कि रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो और जो है ये इनमें उथल पुथल मची रहती है और स्ट्रैटेजी इनकी ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बेटर है और उसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बेटर चांसेस हैं जीतने के। पैन तो उन्होंने कहना जरूरी
थी। क्यों कह रही उसने?
हाँ, नहीं तुमने तुम्हें कहना ये जरूरी था, तुम क्यों जिंक्स कर रहे हो चीजों को, वो बेचारे मासूमों को खेलने दो भाई तुम। व्हाट इज दिस राशिद लतीफ, मुंह बंद।
इंटरेस्टिंग
पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान को हराने की।
ऑफ कोर्स पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा इंडिया को हराने की।
और जनाब कनाडा ने भी फटे चक लिए, नीले जे तो कुछ करने के लायक नहीं है मजद भाई के, लेकिन कनाडा वैसे बड़े अच्छे काम कर रहा है। कनाडा की जो अंडर 18 की जो टीम है जनाब, 3rd स्ट्रेट विन उसने आज लिया है, जो इसको स्वीडन को 3-0 से हटाया है एट लिंका ग्रिट्सी कप में, और इससे इन्होंने 43 ऑल टुगेदर गोल्स किए थे। इससे पहले इन्होंने इसके लिए जो है ये लिंका ग्रिट्सी कप के लिए स्विट्जरलैंड को 14-0 से संडे को हराया और स्लोवेकिया को 9-1 से अभी ट्यूसडे को हराया है। तो अब जो है और ग्रुप ए में अब ये ऊपर हैं और इनका मुकाबला जो है ये फिनलैंड के साथ हो सकता है फॉर सेमीफाइनल्स। तो ये मैच जो है ये सैटरडे को होगा, तो अब देखेंगे कि कौन गोल्ड जीतेगा और कौन ब्रोंज जीतेगा। एंड जनाब जो कनाडा के जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं थॉमस क्रॉमवेल, उनको अब जो है हेड बनाया गया है टू इंडिपेंडेंटली रिव्यू ये जो सारे एलिगेशंस आए हैं हॉकी कनाडा के ऊपर, उसके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर था कि ये जो लीडरशिप है इसको हटाया जाए। तो जो है यहां पे हॉकी कनाडा, उन्होंने कहा था कि हम इमीडिएटली रिव्यू शुरू कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के ये जो केसेस आए थे, जिसको के न्यूज जिसकी के ब्रेक की गई थी मई में। मेंबर्स ने कहा था कि 2018 में जो जूनियर टीम है उसने एक गाला में जो लंदन में हो रहा था उसमें सेक्सुअली असॉल्ट किया था एक लड़की को, तो कुछ जो है कंप्लेंट्स आई थी, तो उनको अब ये प्रोब करेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट, माजिद भाई ने जिक्र इसका कर ही दिया, यूएस बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर, 31 इयर्स इनकी एज है, इनको 9 इयर्स के लिए रशिया के अंदर कन्वर्ट किया गया है। माजिद भाई आपको पता है इसका कद क्या है? 6'6"
या
कैन यू इमेजिन?
आप बराबर मत खड़े
हैं,
आप अगर इसके बराबर में खड़ी हो गई
तो नजर ही नहीं आऊंगी मैं तो।
नहीं
हाँ,
लोग उन्हीं को देख रहे होंगे, कैमरा भी आपको कवर नहीं करेगा।
ना ना वो कर ही नहीं सकता ना, इतना ज्यादा गैप है। अनलेस एंड अंटिल ये मुझे ऐसे गोद में उठा ले हैं।
हाँ, वो
दूसरी बात है,
वो उठा भी सकती है।
हाँ, वो उठा भी सकती है, ठीक है। तो 2-time यूएस ओलंपिक चैंपियन है और 8-time जो है ऑल स्टार है विद WNBA's फिनिक्स मर्करी। तो इनको जो है आज कॉन्स्टेंटली वहां पे जो इंटरप्रेटर था वो इंटरप्रेट कर करके बता रहा था, जज एना स्टोनिकोवा जो इनकी जब वर्डिक्ट सुना रही थी, और इसके अलावा इनको $16,700 का फाइन भी किया गया है। प्रेसिडेंट बाइडन ने ये जो सेंटेंसिंग हुई है और जो वर्डिक्ट सुनाया गया है उसको बेतहाशा डिनाउंस किया है और उन्हें कहा है कि ये वर्डिक्ट अनएक्सेप्टेबल है और मैं रशिया को कहूंगा कि इमीडिएटली इस लड़की को छोड़ा जाए ताकि वो अपनी वाइफ के साथ के पास वापस आ सके और अपने लव्ड वंस और फ्रेंड्स और टीममेट्स के पास भी आ सके। यस यू हर्ड मी राइट, इस लड़की के बारे में बाइडन साहब ने कहा है कि इसको फौरन छोड़ो ताकि ये अपनी वाइफ के पास आ सके, ओके, एंड अपना जो है वो काम कर सके यहां पे आके। तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद इसके लिए और पॉल विलहन जो है जिसको कि एस्पिनाज के लिए जो है वहां पे पकड़ा हुआ है, तो एस्पिनाज के लिए पकड़ा हुआ है, तो वो बाइडन साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे इन दोनों को घर लाने की।
तो वो तो, वो तो है ना, वो हाँ, डील स्वाप, चल रही है बिहाइंड द सीन्स, उनकी डील चल रही है कि वो स्वाप करेंगे।
या।
मगर ये कह रहे थे अमेरिकन्स, कह रहे थे कि ये दो की जगह हम एक छोड़ेंगे तुम्हारा, एंड रशिया इज सेइंग कि भाई ये दिस इज नॉट अ फेयर डील, दो की जगह दो छोड़े हैं। तो उन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं, इन्होंने भी कुछ नाम दिए हैं, तो उसमें अब देखेंगे कल परसों तक। मगर ये क्योंकि ये केस इतना
हाई प्रोफाइल है ना,
हाई प्रोफाइल केस है, तो इस पे अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी बाइडेन साहब पे भी बड़ा दबाव है। रशिया में तो कोई दबाव नहीं है,
नहीं नहीं वहाँ
रशिया में तो ये न्यूज ही नहीं है।
रशिया
में दिस न्यूज इज अ वेरी स्मॉल न्यूज,
मे बी ऑन द स्पोर्ट्स पेज,
हाँ,
लेकिन अमेरिका में तो ये फ्रंट पेज की खबर,
फ्रंट पेज की खबर है। तो वो जो है इस पे अमेरिका जो है उसको जरा लीनेंट होना पड़ेगा, एंड रशिया नोज दैट कि भाई इस पे अब इस ये वक्त है कि हम उस पे दबाव पे डाल के जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए वापस।
लेकिन ऐसा ना हो रशिया के हमारे चार बंदे छोड़ो हम तुम्हारे दो छोड़ेंगे, फिर
यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू नेवर नो कि हो सकता है ऐसा हो, यू नेवर नो, क्योंकि अभी उनका वो है तो वो कह सकते हैं कि भाई हमारे ये चार छोड़ो तो हम तुम्हारे दो छोड़ते हैं,
दो छोड़ेंगे,
क्यों रशियंस को तो आप रख लो,
हाँ।
नहीं ऐसा नहीं कहते वो, मगर ये कि होपफुली विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज कुछ ना कुछ इनके पता आएगा। मगर जैसे आपने कहा कि वहां की जज ने जो है 9 साल की इनको कैद दी है, तो अब
तो वो कॉन्स्टेंटली आप देखें उधर, जब आप अगर वीडियो देख रहे होंगे ना तो वो ऐसे वो उसके पास खड़ा हुआ था तो वो उसको कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेट कर
ट्रांसलेट कर रहा था क्योंकि वो नीड अ ट्रांसलेटर,
तो इंटरप्रेट करके बता रहे थे।
ये थी हमारी आज की खबरें,
ये सारी खबरें आज की थी,
आज की थी। बाकिया की खबरें
कल, बहुत सारी स्टोरियां कल भी लाएंगे,
कल भी लेके आएंगे साहब, वादा कर लिया उन्होंने, और कल लेके आएंगे खबरें कुछ। थैंक यू सो मच
शारदे जी,
कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, इसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
अगर हो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर से परेशान तो कॉल करें मुझे, मेरे मेहरबान बना करके दूंगा आपको ऐसा प्लान कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी आसान। मसला हो चाहे आपकी मॉर्गेज उतारने का, बच्चों की एजुकेशन का, या आपकी अपनी रिटायरमेंट का, मेरे पास हैं अवेलेबल ऐसे प्लान जो मेक श्योर करते हैं कि आपको मिले अच्छी बचत, लोएस्ट रेट्स, क्योंकि मैं डील करता हूँ तमाम की तमाम इंश्योरेंस कंपनी के साथ। फायदा उठाइए कॉल करके मेरे लंबे एक्सपीरियंस का, एट 905-607-5000। मैं हूं फजल वदूद फ्रॉम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज। सी यू सून।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ,
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
Ringing, buzzing, hissing, time to get your hearing checked.
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी साहब नाजरी, वेलकम बैक अगेन, एंड 6:47 और 8 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। और चलिए साहब, अब एक खूबसूरत कलाम की तरफ लिए चलता हूँ आपको मैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये कलाम है, और इसको समाप्त फरमाइए, इसके फौरी बाद हम आपको लिए चलेंगे जीशान के पास, और जीशान अपना बकिया का प्रोग्राम आपके लिए पेश करेंगे 8:15 तक का।
अप जाती है दुनिया, खून के आंसू बहाती है, या हुसैन या हुसैन। Shah, 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 Shah,
पीर की गर्दन पे जिस्म चल रही हो
फलक
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
UK, Switzerland, ate Italy to baad, Khalistan referendum diyan votaan da agla pada, Canada. Canada vich Khalistan referendum diyan votaan da pehla center, 18 September din aitwar nu Toronto vich lagega. Voting center di location janan layi, jaan hor jaankari len layi, sampark karo 437-423-2669 ਜਾਂ 437-423-2666।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਟੇਰੀਓ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 29ਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2022 ਸ਼ਨੀਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਫਰਸਟ ਆਂਟੇਰੀਓ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, USA, ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ 416-648-5050 ਜਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਮਾਨ 416-617-2405। ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2022।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care.
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਮਟਨ, 9058747171।
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
SNS Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ SNS Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।